नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। इसराइल में भारत के राजदूत जीपी सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसराइल यात्रा ऐतिहासिक साबित होगी। यरूशलम में आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से वार्ता के अलावा श्री मोदी इसराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से भी मुलाकात करेंगे और इसराइल की संसद नेसेट को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2017 में इसराइल की यात्रा की थी, तब उन्होंने श्री नेतन्याहू के साथ मिलकर द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने की नींव रखी थी। श्री सिंह ने कहा कि अब समय आ गया है कि उस रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जाए। उन्होंने कहा कि दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इधर भारत में इसराइल के राजदूत रूबेन अजार ने कहा है कि इसराइल इस सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देश निर्णायक रूप से आगे बढ़ेंगे। इसराइल के राजदूत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत और इसराइल सुरक्षा समझौतों को अद्यतन करके रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेंगे।
भारत और इसराइल कई वर्षों से मिलकर काम कर रहे हैं और हमें अपने मजबूत रिश्ते पर गर्व है, लेकिन दुनिया तेजी से बदल रही है और चुनौतियां भी बढ़ती जा रही है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत करना होगा तथा अपने सुरक्षा समझौतों को नया रूप देना होगा। इससे हमें अपनी परियोजनाओं में साथ काम करने और तकनीकी समाधान विकसित करने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता को पत्र लिखकर उनसे विकास के सफर में साथ देने की अपील की है। बंगाली और हिंदी में लिखे गए इस पत्र में प्रधानमंत्री ने वहां से लोगों से अपील की है कि राज्य के लिए भारतीय जनता पार्टी के विकास संबंधी दृष्टिकोण को वे अपना समर्थन दें। श्री मोदी ने कहा कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य किस राह पर चलेगा, ये राज्य की जनता के सुविचारित निर्णय पर ही निर्भर करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस योजना का दूसरा चरण नीति आयोग द्वारा अवसंरचना संबंधी मंत्रालयों के परामर्श से तैयार किया गया है, जो केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना 2025-30 के जनादेश पर आधारित है। गृह मंत्रालय ने देश की नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति प्रहार का अनावरण किया है। ये रणनीति आतंकवाद के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए एक व्यापक व्यवस्था प्रस्तुत करती है। इसमें आतंकवाद को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण को अपनाया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि हालांकि खतरों का स्वरूप लगातार बदल रहा है, नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, फिर भी देश सभी तरह के आतंकवाद का विरोध करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित छठी केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत 2,88,000 से अधिक आवासों को अपनी मंजूरी दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत अब तक स्वीकृत आवासों की कुल संख्या 13,61,000 से अधिक हो गई है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित होगा। ये सम्मेलन 27 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आयोजित हो रहा है। पिछला सम्मेलन वर्ष 1999 में हुआ था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से महाराष्ट्र, झारखंड और राजस्थान के 4 दिन के दौरे पर रहेंगी। श्रीमती मुर्मू आज मुंबई के लोकभवन में पीडीजी हिंदुता अस्पताल द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी अभियान जीवन बचाओ और स्वस्थ भारत बनाओ का उद्घाटन भी करेंगी। मुंबई में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मैच में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।